ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हम सभी आपस में मुरली रिवीजन करेंगे। तो बहुत सुंदर गीत सुना, आपका ग्रुप भी वरदानी ग्रुप है और गीत भी बजा वरदान लुटाने वाले। तो बाबा रोज वरदान लुटाते हैं और हम अपनी झोली वरदानों से भरपूर करते हैं। आज की मुरली सभी को याद होगी, कितने बाबा ने वरदान दिए, कितने सोमान भरे बोल बोले, महावाक्य उच्चारण किए। आज की मुरली एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, भरपूर कर दिया। जैसे कि क्या कहा बाबा ने, आप कौन हैं? कौन हैं आप? नई दुनिया के आधार मूर्त हैं। और कौन हैं? तस्वीर हैं आप। ब्राह्मण जीवन कैसा है? नई दुनिया का तस्वीर है। आप अपने आप को देख करके कि नई दुनिया कैसे होगी, वहां की राजधानी कैसे होगी, स्वर्ग कैसा होगा, हम कैसे होंगे, सब आप पता कर सकते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बहुत स्पष्ट बताया कि आप अपना चित्र देख करके, अपने आप को देख करके हमारे आने वाली राजधानी कैसे होगी वो आप पता कर सकते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि अगर कोई बच्चा पूछे कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूं तो बाबा उसको बता सकते हैं। तो ऐसे ही एक बार एक बच्चे ने बाबा से पूछा, अव्यक्त बाप दादा से, बाबा आप तो कहते हो कि मैं बता सकता हूं भविष्य में क्या बनने वाले हो, तो बाबा आप मुझे बताओ मैं भविष्य में क्या बनूंगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, इतनी स्पष्ट बात कि अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आपके सामने भी आ जाएगा भविष्य, क्लियर आ जाएगा आपके सामने, चित्र आ जाएगा मैं क्या बनने वाला हूं, राजा बनने वाला हूं या साहूकार बनने वाला हूं या दास दासी बनने वाला हूं, आपके सामने क्लियर चित्र आ जाएगा। तो बता दें या नहीं? घबराएंगे तो नहीं कहीं दास दासी वाला ना आ जाए? ठीक है बता दूं? अच्छा, अलर्ट रहना थोड़ा सा। तो बाबा ने कहा एक दिन अपनी दिनचर्या चेक करो, अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक उसके बीच में देखो, क्या मैं सारा दिन स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहा? यदि आप सारा दिन स्वराज्य अधिकारी आत्मा राजा बनकर के रहते हैं, कर्म इंद्रियों को अपने आर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो आप भविष्य में आपकी राजाई निश्चित। और यदि सारे दिन में, कई बार होता है ना हम कर्म इंद्रियों के अधीन भी हो जाते हैं, कई बार नहीं नहीं मुझे राजा बन करके रहना, दोनों बातें चलती है, अधीन भी हुए अधिकारी भी बने, तो भविष्य में साहूकार। और सारा दिन यदि हम अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखे, जो आया सो खाया, जो आया सो बोला, जो आया सो किया, है ना, अलबेले रहे, मना सारा दिन ही कर्म इंद्रियों के अधीन रहे, तो भविष्य में भी अधीन दास दासी। अब अपने आप से पूछो हमारे सामने कौन सा सीन आया, राजा वाला सीन आया या साहूकार वाला सीन आया या दास दासी वाला आया? अब मैं पूछूंगा नहीं ये बात, आप अपने दिल से ही पूछ लेना कि मेरे सामने कौन सा सीन आया। इसलिए बाबा कहते हैं कौन कितना समय से ज्ञान में चलता है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन में कितने समय से चल रहा है वो बड़ी बात है। आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अभी आपके भोजन की शुद्धि नहीं हो पाई है, आप बाहर जाकर के खा लेते हैं। कहते हैं ना, बाबा ने कहा है ना, दृष्टि से तुम सृष्टि को परिवर्तन कर देते हो तो क्या भोजन नहीं बदलेगा, क्या भोजन नहीं पावन होगा? ऐसे हम अलबेलेपन के संकल्प ला करके खा लेते हैं। और एक है जो एक वर्ष से ज्ञान में चल रहा है, वो बाहर का भोजन छोड़ दिया तो कौन है आगे ज्ञान में, एक वर्ष वाला? तो मेन बात है ज्ञान स्वरूप हमारा जीवन कहां तक बना है। तो वही आज बाबा कह रहे थे, सारा दारो मदार आपकी स्थिति के ऊपर है। तो आपके कर्म भविष्य में क्या प्राप्त कराते हैं? श्रेष्ठ फल। श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ फल, और श्रेष्ठ संकल्प उसके आधार से क्या बनता है? श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ संस्कार, दैवी संस्कार बनते हैं। बाबा हमें कुछ नहीं करता कि बाबा एक को राजा रानी बना दे, दूसरे को दास दासी बना दे। वो बोलेगा ना कि बाबा हमने क्या गलती की, उसको राजा बना दिया, हमें दास दासी। हम खुद अपने आप को बनाते हैं। बाबा विधि बताते हैं, रास्ता बताते हैं। जैसे माताओं को अनुभव है, माताएं अपने बच्चों को अच्छी बात ही सिखाएंगी हा? लेकिन अगर बच्चा दुखी होता है, परेशान होता है, तो कारण माँ बाप की बात नहीं मानता है तो दुखी होता है, मानता है तो सुखी रहता है। इसी प्रकार हम, बाबा तो हमें अच्छी बात बताते हैं, जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना हम आनंदित रहते हैं। तो बाबा ने कहा, श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ संस्कार आपके दैवी संस्कार बनते हैं, और वो दैवी संस्कार आपको देवी देवी देवताओं की दुनिया में लाते हैं। देवी देवताओं की दुनिया, दैवी दुनिया, स्वर्गिक दुनिया तो आएगी। दुनिया में भी कहते हैं हाँ ये कलयुग चल रहा है, सतयुग आएगा, इतना तो दुनिया में भी पता है कलयुग चल रहा है। और कोई घटना घट जाती तो क्या बोलते हैं, घोर कलयुग आ गया हा? इतना भी बोलते हैं हाँ भाई सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग में जाएगा कौन हा? सतयुग में जाने के लिए सतयुगी संस्कार बनाना पड़ेगा ना, या सारे कलयुगी आत्माएं सतयुग में चली जाएंगी? अगर सारे कलयुगी आत्माएं सतयुग में गई तो वो भी कलयुग हो जाएगा, सतयुग रह ही नहीं पाएगा ना। तो सतयुगी संस्कार चाहिए। तो आज बाबा ने कहा, तुम श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ संस्कार बनाते हो। बाबा ने कहा, देखो अपने आप को, आप साधारण नहीं हो, कितने महान हो, कितने ऊंच हो। आप श्रेष्ठ बनते हो तो दुनिया श्रेष्ठ बनती है, आपकी उड़ती कला तो विश्व की उड़ती कला, आप नीचे गिरते हो तो सारा विश्व नीचे गिरता, आप सतो प्रधान तो सारा विश्व सतो प्रधान, आप तमो प्रधान तो सारा विश्व तमो प्रधान, आपकी स्टेज परिवर्तन होती है तो विश्व की स्टेज परिवर्तन होती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा तुम पूर्वज हो, सारे विश्व के पूर्वज हो, सारे विश्व के आधार हो, इस कल्प वृक्ष की चैतन्य जड़े हो। आप हिल जाओगे, आप सूख जाओगे तो सारा वृक्ष सूख जाएगा, सारा वृक्ष हिल जाएगा, क्योंकि सारे वृक्ष। और शिव बाबा क्या है? कल्प वृक्ष का बीज है, और हम क्या है? हाँ, तना है, जड़े हैं, चैतन्य जड़े हैं। और बीज के द्वारा ही सारे वृक्ष में शक्तियां जाती है, लेकिन किसके थ्रू जाएगी? चैतन्य जड़ों के आधार से। शिव बाबा भी अकेले आना कुछ नहीं कर सकता, आपको माध्यम बनाया है, आपके द्वारा ही सारे वृक्ष है ना को सकाश शक्ति पालना। अभी आप सोचो, बाबा ने आपको सारी दुनिया से सिलेक्ट किया है, पसंद किया है कि यही मेरे बच्चे मेरे कार्य में मददगार बनेंगे, विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनेंगे। अपना राइट हैंड बनाया, आपको पसंद किया करोड़ों आत्माओं में से, और यदि हम ही सुस्त रहें, हम ही ठंडे रहें, हम ही अलबेले रहें, हम ही एक दूसरे को देखते रहें, तो दुनिया वालों का क्या हाल होगा? और बाबा भी सोचेगा मैंने किसको पसंद कर लिया है? सारे संसार में कितने बड़े बड़े धर्म नेता, राजनेता, अभिनेता, साइंटिस्ट, किसी को पसंद किया? सब ढूंढ रहे हैं, दर दर धक्के खा रहे हैं, सब यही कह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ईश्वर का रूप है। और बाबा ने कितना स्पष्ट ज्ञान दे दिया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मलोक क्या है। इतना स्पष्ट ज्ञान होने के बावजूद भी अगर हम अलबेले रहें तो क्या कहा जाएगा? तो बाबा ने कितनी बात बताई, कितने हमारे स्वमान चढ़ाए कि तुम बाबा के साथ साथ भगवान के साथ साथ भगवान के कार्य में सहयोगी हो। किस बात के सहयोगी? विश्व परिवर्तन के कार्य में। बाबा ने कहा तुम सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाले हो, तुम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले हो, तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले काम धेनु हो। हम अपनी इतनी जिम्मेवारी समझते हैं? जैसे भगवान ने अवतार लिया है इस धरा को पावन बनाने के लिए, इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए, ऐसे मेरा भी अवतरण हुआ है परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनने के लिए। रोज सुबह उठते ही यही संकल्प करो, मैं भी भगवान की तरह अवतार लिया हूं, दैवी सृष्टि, दैवी धर्म की स्थापना के लिए, दैवी सृष्टि की स्थापना के लिए। मेरे द्वारा कोई भी अधर्म का कार्य हो नहीं सकता क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आज बाबा ने कितना स्वमान चढ़ाया। तो एकांत में बैठ करके हमें अपने आप से बातें करने की जरूरत है। कोई कितना भी समझाएगा ना, हमें समझ में नहीं आएगा। हम यही कहेंगे हम भी पुराने हैं, हमें सब पता है। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं समझाएंगे, खुद के खुद टीचर नहीं बनेंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन आ नहीं सकता। यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो स्वयं का टीचर बनना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा आपकी तस्वीर ऐसी हो जो सामने वाला देख करके प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए आपको देखकर। बाबा यही तो चाहते हैं। कई आत्माएं ऐसे जो ज्ञान में आती हैं और वो उनके घर में कला कलेश, लड़ाई झगड़ा, बहुत दुखी, लेकिन ज्ञान में आते ही सारा है ना, उनके चेहरे पर वो खुशी आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी सेवा होती है। उनको ज्ञान सुनाना नहीं पड़ता। यदि आप खुश रहते हैं ना तो आपको ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आपके पास आएंगे, पूछेंगे आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, आप इतना खुश कैसे रहते हो? पहले तो आप बड़े परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, आपके घर में झगड़ा चलता था, आपके घर में अब शांति आ गई, आप कितने खुश रहने लगे, आप क्या करते हैं हमें भी बताओ, जहां आप जाते हो हमें भी ले चलो। और यदि हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, चेहरा लटका रहेगा, ज्ञान सुनाएंगे फर्क पड़ेगा? हाँ, वो कहेगा पहले अपने आप को तो देख लो, चेहरे पर 12 बज रहे हैं, चले ज्ञान सुनाने, है ना। तो स्व परिवर्तन से हम दूसरों का परिवर्तन कर सकते हैं, विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा आप ऐसा बन जाओ कि रोने वाला आए और मुस्कुराते हुए जाए। आप ऐसा शांति के भरपूर बन जाओ कि कोई अशांत आत्मा आए और शांति से भरपूर होकर के जाए, भिखारी आए भरपूर होकर के जाए, अप्राप्ति वाला आए प्राप्ति से भरपूर होकर के जाए। ऐसा बाबा चाहते हैं कि ऐसा बन जाओ। तो हम देखें हम ऐसे बने हैं जैसे बाबा हमें चाहते हैं, हम वैसे बने हैं। और अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? क्या संगम युग हमारा युद्ध में ही बीत जाएगा? संगम युग हमारा व्यर्थ में ही बीत जाएगा? संगम युग हमारा असंतुष्टता में ही बीत जाएगा? हम अपने आप से पूछें, हम अपने समय को कैसे सफल कर रहे हैं? तो बहुत जरूरी है एकांत में बैठ करके स्वचिंतन करने की, स्वदर्शन करने की और स्वपरिवर्तन करने की। और आगे क्या बोला बाबा ने, आपकी संपूर्ण स्थिति से 16 कला संपूर्ण स्थिति बनती है। और आप यहां सर्व खजानों से संपन्न बनते हो तो भविष्य में, आज सर्व खजानों से संपन्न तो भविष्य में सर्व प्राप्तियों से संपन्न, कोई भी अप्राप्ति नहीं रहेगी। एक बार बाबा ने कहा कि अंत में प्राप्तियों की लिस्ट सामने आएगी तो उस समय बहुत पश्चाताप होगा कि बाबा से तो हमें बहुत कुछ प्राप्त था लेकिन हम तो खाली के खाली रह गए, कुछ नहीं ले पाए, हम एक दूसरे को देखते ही रह गए, आलस अलबेलेपन में हमने अपने समय को गंवा दिया। तो बाबा ने कहा उस समय बहुत पश्चाताप होगा, इसलिए बाबा ने कहा अंत के पश्चाताप से छूटने के लिए अभी पश्चाताप कर लो, अभी रियलाइज कर लो कि बाबा से हमें क्या क्या मिला है। तो पता चलेगा कि बाबा से तो हमें बहुत कुछ मिला है लेकिन हम तो अभी कुछ लिया ही नहीं है, हम तो खाली के खाली ही रह गए। भगवान भोलानाथ बनकर के देने आया है और फिर भी हम खाली रहे तो कौन आएगा भरपूर करने? अगर अभी हमने योग का सुख नहीं लिया, अभी हमें आत्मसंतुष्टता का अनुभव नहीं हुआ, ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? क्या संगम युग हमारा ऐसे बीत जाएगा क्या? कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा अभी कैसे हम निरोगी बनते हैं, जितना हम दैहिक आकर्षणों से मुक्त होते जाते हैं ये क्या करता है, ये तंदुरुस्ती का आधार है। जितना हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे उतना हमारी लंबी आयु होगी, निरोगी हम बनेंगे। और बाबा ने कहा कि यहां पर आप अटल अचल अडोल, मन एक बाबा दूसरा ना कोई, ये आपकी स्थिति बनती है। तो भविष्य में ये हम साधना करते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो इस आधार से हमें क्या प्राप्ति होती है? निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति। यहां निर्विघ्न साधना है तो वहां निर्विघ्न साधन मिलेंगे। यहां हम एक माता पिता के संपर्क में है ना, बाबा हमारा माता पिता है, सर्व संबंधों की अनुभूति एक से करते हैं, बाबा ही हमारा माता पिता है। तो वहां भविष्य में विश्व महाराजन वो माता पिता के रूप में हम अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा भल मर्तबा होगा, ऊंच नीच का ना भाई, दास दासी साहूकार प्रजा राजा रानी ये सब होंगे, लेकिन वहां फीलिंग नहीं होगी कि ये राजा हैं या मैं साहूकार हूं, इन सब की फीलिंग नहीं होगी, परिवार की फीलिंग होगी। तो बाबा ने कहा आप देखो अपने आप को कि यहां पर हम एक मत, एक श्रीमत, एक की श्रीमत पर चलते हैं, तो इसके आधार से भविष्य में क्या मिलता है? एक राज्य। जो बाबा ने कहा एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, तो वो यहां का यादगार है। ऐसे हम थोड़ी एक में पहुंच जाएंगे, अगर एक धर्म वाली दुनिया में तब जाएंगे जब हम आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित रहती है सारा दिन। एक धर्म हमारी एक ही धारणा में हम स्थित रहते हैं। एक बार जानकी दादी क्लास करा रही थी, कह रही थी देखो हम अपने आप को अभी तक 90% नहीं जानते। तो हम लोगों ने सोचा हाँ हम अपने स्वमान में नहीं रहते, जानना माना अपने स्वमान में ना रहना। तो दादी ने इतनी प्रैक्टिकल बात बताई, कहा देखो हम रोज मुरली में सुनते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, और किसी ने आकर हमारे सामने आवेश में आकर के बोलने लगा तो हम उस समय शांत स्वरूप रहते हैं, शांत स्वरूप रहा अपने आप को समझा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब ये प्रैक्टिकल में जब हम व्यवहार में आते हैं तब पता चलता है ना। किसी ने जरा भी हमारे साथ है ना हमारी ग्लानी क्या कर दी या कुछ इंसल्ट कर दी तो हम शांत स्वरूप रहे, हम प्रेम स्वरूप रहे, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चालू कर देते हैं तो कहां हम अपने आप को जानते हैं। तो अपने आप को जानना माना उस स्वरूप में स्थित होना। तो बाबा ने कहा अब अपने आप को देखो कि एक धर्म अर्थात अगर एक धर्म वाली दुनिया में जाना है तो सारा एक धर्म अर्थात सतयुग के आदि से आना है तो हमें एक धर्म अर्थात आत्मा का जो स्वधर्म है, क्या है स्वधर्म? सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद शक्ति, तो अपने स्वधर्म में स्थित रहें। एक राज्य में जाना है तो आत्मा का राज्य जब हम अपने ऊपर राजाई करेंगे, जब संपूर्ण रूप से हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तब हम एक राज्य में जाएंगे। एक की श्रीमत पर चलेंगे तो वहां पर एक भाषा वाली दुनिया में जाएंगे और एक एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत है ना। तो जब आज हमारे अंदर एकता होगी तब उस एक एकता वाली दुनिया में जाएंगे। तो बाबा ने कहा अब अपने आप को साक्षी होकर के अपने चित्र को देखना, ठीक है ना, मैंने अपना चित्र कैसे बनाया है। बनाने की कलम बाबा ने आपको आपके ही हाथ में दे दी है। कौन सा कलम है? कलम सबके पास कौन सा कलम दिया है बाबा ने? ले कलम ही नहीं पता भूल गए क्या? बाबा ने कलम दी है आपको, जितनी बढ़िया चित्र बनाना चाहे आप अपना बना लें। कौन सा कलम दिया है? श्रीमत रूपी, हाँ श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम। अगर कोई दूसरा बनाने वाला हो तो हम उसको उलाहना दे देंगे, मेरा आंख टेढ़ा कर दिया लेकिन हमें अपने ही हाथ से बनाना है ना, तो इसमें दूसरा कोई बाबा भी नहीं बनाता है, आप खुद बनाते हैं। तो जितना सारा दिन श्रीमत मर्यादा पर रहेंगे, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम को साथ में रखेंगे, उतना आपका तस्वीर बहुत सुंदर होगा। और बाबा ने कहा जिसने अपना सुंदर तस्वीर बना लिया है वो फर्स्ट क्लास, हाँ उसका नंबर आएगा ही। अच्छा फिर आगे बाबा ने कौन सा हाथ बाप दादा का हाथ, बाबा ने कहा सदैव अपने सिर पर अनुभव करना है, लेकिन कौन सा हाथ? श्रीमत रूपी हाथ, सदा अपने मस्तक पर अनुभव करना है। तो जब श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? एक रस रहेगी, समर्थ रहेगी, हम शक्तिशाली रहेंगे और शक्तिशाली सारा दिन निर्विघ्न चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। एक मुरली है 31 दिसंबर 1970, उसमें बाबा ने आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक हर कर्म की श्रीमत बताई है। अगर आप वो मुरली पढ़ लेंगे 1970 31 दिसंबर 1970, अगर आप वो मुरली पढ़ लेंगे आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक हर कर्म की श्रीमत, आंख खुलते ही क्या संकल्प आए और सारे दिन का लेकर के रात्र सोने तक सोने के समय फिर किस संकल्प से सोना है, सारी दिन की दिनचर्या उसमें बताई है। आप उसको 2-3 बार पढ़िएगा, फिर देखिएगा जो कहते योग हमारा नहीं लगता, योग कैसे आपका लगेगा। आपकी दिनचर्या श्रीमत प्रमाण, तो सारा दिन आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और योग भी बहुत अच्छा लगेगा, हर बात बिल्कुल सहज हो जाएगा। तो सारा दिन हम श्रीमत प्रमाण चलते रहें। अब इसके ऊपर आप खुद चिंतन करना, आपके लिए होमवर्क है कि अमृत वेले से लेकर के आप वो तो पढ़ लेना, उसमें तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप खुद चिंतन करना बाबा ने मुख्य मुख्य श्रीमत कौन सी बताई है। कम से कम 10 श्रीमत की पॉइंट नोट करो, आप चिंतन करके, अभी नहीं बाद में कर लेना, कम से कम 10 पॉइंट मुख्य मुख्य श्रीमत नोट करो और रात में सोने के पहले उन 10 श्रीमत को सामने ला करके अपने आप को चेक करो, क्या मैं इस श्रीमत के अनुसार हमारी दिनचर्या रही, क्या इस श्रीमत के अनुसार हमारी दिनचर्या रही। ठीक है, और आगे सहज योगी बनने की बाबा ने क्या विधि बताई। बाबा को क्या समझना है, बाबा ही संसार है, तो समझते हैं ना बाबा। और जब बाबा ही संसार बन गया तो संसार में 2 चीजें होती है, एक व्यक्ति दूसरा वैभव। हमारी 2 चीजों में बुद्धि जाती ना, या तो व्यक्ति में या तो वैभव में। और जब बाबा को ही अपना संसार बना लिया तो बुद्धि कहां जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। तो हमारा योग सहज योगी बनने के लिए कितनी सुंदर कि बाबा को ही अपना संसार बना लो, तो कहीं बुद्धि जाएगी ही नहीं। और एक चीज ये नियम बनाना कि जब भी आप योग में बैठते हैं तो एक संकल्प, बिना कोई लक्ष्य लिए, बिना कोई संकल्प लिए आपको योग में बैठना ही नहीं है। अपने पूरे, नहीं तो क्या होगा, हम 20 साल से 30 साल से 40 साल से ज्ञान में चलते हैं और यही शिकायत होती कि योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, वही रूटीन कि हम कोई संकल्प लेकर के बैठते नहीं हैं, कोई लक्ष्य लेकर के। आपको आधा घंटा बैठना है, आप पहले सोचो मुझे इस आधे घंटे में करना क्या है, है ना, इसका जवाब लो अपने आप से। जब तक आंसर आवे नहीं तब तक आप बैठो। हम तो यही सलाह देता हूं कि आप बैठो ही नहीं योग, क्योंकि बैठना है तो अगर हमने संकल्प नहीं लिया तो साधारण तरीके से एक दूसरे को देखते हुए, घड़ी को देखते हुए, कहीं घुटना दर्द होगा, कहीं कमर दर्द होगा, कहीं घड़ी की तरफ देखेंगे, कहीं एक दूसरे की तरफ देखेंगे, टाइम पूरा हो जाएगा, उठ के चले जाएंगे। इसलिए बाबा ने इतनी सुंदर सुंदर विधियां बताई, वो किसके लिए बताई है, कब के लिए बताई है, है ना, हमारे लिए तो बताई है। तो आप लक्ष्य, संकल्प, पहला संकल्प यही ले लो, समझो आधे घंटे से योग चल रहा है, आप ये करके देखना। मैं इस आधे एक घंटे से समझो योग चल रहा है, तो आप ये संकल्प कर लो कि इस एक घंटे का सुख मैं आधे घंटे में लूंगा और ये अभ्यास करूंगा। हम साधारण तरीके से आकर बैठ जाते हैं तो योग भी हमारा साधारण तरीके से चला जाता है, और पावरफुल संकल्प लेकर के बैठते हैं तो योग भी हमारा पावरफुल, तो आत्म अवमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करेंगे, बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, पांचों स्वरूप का अभ्यास करेंगे, है ना, ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, क्या करेंगे। नहीं तो समय निर्धारित कर, भाई 10 मिनट हम आत्मा की सातु गुणों का अभ्यास करेंगे, 10 मिनट हम फरिश्ते स्वरूप का भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे, 10 मिनट हम परम धाम स्थिति का अभ्यास करेंगे। ऐसे ऐसे आप प्लान बनाओ, फिर योग करो। ठीक है, और दूसरी बात, मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि योग करने के पहले ना 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट आप उस दिन की मुरली अंदर घुमा लो, मुरली रिवाइज कर लो। ये करके आप योग करना उसका रिजल्ट, आप ऐसे ही योग करो उसका रिजल्ट देखना, और 5 मिनट आप मुरली अंदर में चिंतन करके फिर योग करना उसका रिजल्ट देखना, आपको रात दिन का फर्क लगेगा। अच्छा चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बाबा ने क्या कहा, तो सन्नाटा हो गया हाल में। क्या बात है, बाबा ने कहा जो योग युक्त हैं वही क्या बनेंगे, माया मुक्त। अच्छा बाबा ने कहा माया भी शक्तिशाली है लेकिन तुम भी तो शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा ने कहा माया से घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा का हाथ और साथ है, 1000 भुजा वाला तुम्हारे साथ है, इसलिए क्या होगा कैसे होगा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। माया क्या है हमारे सामने, कई बार बाबा कहते हैं माया को क्या बताते हैं, पेपर टाइगर। एक बार तो बाबा ने कहा मरी हुई चींटी है, तुम घबरा जाते हो मरी हुई चींटी से, है ना, तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान का साथ है तो माया कुछ भी नहीं है। अच्छा और आगे बाबा ने क्या कहा, सच्चे सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी जो सच्चे साफ दिल वाले बच्चे हैं, सच्चे सेवाधारी हैं, उनके लिए बाबा ने क्या कहा, सच्चे दिल पर, बाबा ने 88 की अव्यक्त वाणी में कहा जो बच्चे सच्ची साफ दिल वाले हैं, बाबा के महावाक्य हैं, जो बच्चे सच्ची साफ दिल वाले हैं अंत अंत में जब पानी पीने योग्य नहीं होगा, भोजन करने योग्य नहीं होगा, लोग त्राही त्राही करेंगे, ऐसे समय पर मैं सच्ची दिल वाले बच्चों के लिए बंधा हुआ हूं, अंत तक दाल रोटी खिलाता रहूंगा। ये बाबा के महावाक्य हैं, ठीक है ना, पसंद है ना दाल रोटी, कि और कुछ चाहिए, है ना, दाल रोटी बाबा, बाबा ने वायदा, बाबा की वायदा है, लेकिन सच्चाई सफाई। तो बाबा ने कहा जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं, बाबा की सेवाओं में सदा तत्पर रहते हैं, हाजिर रहते हैं, तो बाबा ने कहा बाबा की मदद उनको मिलती रहेगी। और बाबा ने कहा अगर कुछ कार्य रह भी जाता है तो बाबा किसी ना किसी को टच करा के उसका कार्य पूरा कराएगा ही, कहा ना बाबा ने, बस तुम सच्ची साफ दिल रख करके चलते चलो। ये नहीं कि देखो सेवा, जब बाबा सेवा का जब भी चांस मिले ना तो हमें, आज हमारा क्या है, घर में मेहमान आ गए, पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया आज, है ना, अनेक प्रकार के बहाने होते हैं। अगर वो बहाना आता है तो बहाना तो एक मात्र एक ऐसे ही है, लेकिन ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ के अंदर पवित्र ब्राह्मण आत्माओं का हाथ लगता है, हमारे अंदर कोई ना कोई अपवित्रता है, कोई ना कोई पाप है जो सेवा करने नहीं दे रही है, कोई ना कोई बोझ है जो हमें सेवा से वंचित कर रही है, नहीं तो सेवा का चांस मिलना बहुत 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 बड़ा भाग्य की निशानी है, भगवान के यज्ञ की, चाहे यज्ञ की सेवा हो या सेंटर की सेवा हो। मुझे याद आ रहा है कि जब मनोहर दादी ने शरीर छोड़ा तो चंद्र वो मनोहर दादी के बारे में अमीर चंद भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, तो एक बात उन्होंने कहा कि अमीर चंद भाई आपका बाबा से कितने संबंध हैं, तो अमीर चंद भाई ने कहा दादी ये बाबा से तो हमारे सारे संबंध हैं, ये भी कोई प्रश्न होता है, तो मनोहर दादी ने कहा नहीं नहीं तुम बताओ तुम्हारे कितने संबंध हैं, तो अमीर चंद भाई ने कहा वैसे तो हमारे सारे संबंध हैं लेकिन मुख्य 3 संबंध के बारे में चर्चा करते हैं बाबा, बाप टीचर सतगुरु। तो दादी ने कहा लेकिन तुम्हारे 3 संबंध नहीं है, तुम्हारा केवल स्टूडेंट और टीचर का संबंध है, है ना, क्योंकि तुम रोज मुरली सुनने आते हो और मुरली सुनकर के चले जाते हो, तो तुम उसके स्टूडेंट हुए। लेकिन बाप और सतगुरु का संबंध अभी तक नहीं जोड़ा है। तो कहा, क्यों दादी, सबका तीन संबंध, मेरा एक ही संबंध, ऐसा क्यों? कहा, ऐसा इसलिए कि तुम मुरली सुनकर के चले जाते हो और बाप बच्चे का संबंध तब माना जाएगा जब बच्चा बाप के कार्य में सहयोगी बने। तुम सारे दिन में कभी आए पूछे सेंटर पर क्या सहयोग की जरूरत है? तो कहा, हाँ दादी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, है ना? दादी ने कहा, वो बच्चा किस काम का जो बाप के कार्य में सहयोगी ना बने? बच्चा वही जो बाप के कार्य में सहयोगी बने। और तुम मुरली सुनकर के चले जाते हो, कोई सेवा करने आते हो दोबारा? कहा, तब से मैंने कान पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं बच्चे का संबंध जोड़ा आज से, बाप और बच्चे का। अच्छा, सतगुरु वाला संबंध बता दीजिए उसका मतलब। तो कहा, सतगुरु का मतलब ये होता है कि शाम को भी आओ और बाबा के सेंटर पर योग करके जाओ। तो ये देखो, तो बाबा के संबंध मना, बाबा के कार्य में हमें सहयोगी बन करके रहना। और ये नहीं, बाबा ने 97 की अव्यक्तवाणी, बाबा ने कहा, कई बच्चे सेवा करते हैं लेकिन वो सोचते, देखा सारा दिन सेवा किया लेकिन टीचर बहन ने एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा, क्या फायदा सेवा करने से? अपने घर में बैठो, जो आगे पीछे घूमते हैं बस उन्हीं की महिमा होती है हमें। तो बाबा ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, टीचर की डिक्शनरी में नाम लिखवाना है या मेरी डिक्शनरी में नाम लिखवाना है? टीचर महिमा करे या ना करे, मैं तो कर रहा हूं, हमारी डिक्शनरी में पहला नंबर तुम्हारा है। तुम दिल से सेवा करते जाओ, किसी को ना देखो। और बाबा ने कहा, ये वरदानी युग है, तुम नाम मान सान चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। नाम मान सान जो बाबा तो भी तथास्तु वरदान दे रहे हैं, नाम मान सान चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन कट क्या हो जाएगा? जो 21 जन्मों का भाग्य है उसमें कट हो जाएगा। तो क्या चाहिए, अल्पकाल का नाम मान सान या 21 जन्मों का भाग्य? 21 जन्मों का भाग्य, दो चार लोगों ने बोला, बाकी लोगों को क्या चाहिए? बोलो ना, क्या चाहिए? 21 जन्मों का भाग्य। बाबा ने कहा, आपने सेवा किया, आपका नाम मान सान सब कुछ होगा, लेकिन हम इतने उतावले हो जाते हैं ना कि हम अपने मुख से ही चालू कर देते हैं। तो हमेशा समझो, करण करावन हार बाबा है, बाबा ने कराया, वही कराने वाला भी है तो वही करने वाला भी है। अच्छा, वरदान, वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहे, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले क्या भव, सफलता मूरत भव। तो बाबा के लव में लवलीन रहना माना, बाबा, हम अगर पूछें आप बाबा के लव में लवलीन रहते हो, बाबा से आपका प्यार है, तो हम क्या बोलेंगे? 100%। तो प्यार की निशानी क्या है? आज भी बाबा ने कहा, देखो, जो प्यार की निशानी होता है, जो उसको पसंद, वही हमें भी पसंद हो, तभी तो क्या कहेंगे ना प्यार। अब बाबा को क्या पसंद है, आप इसके ऊपर होमवर्क करना, चिंतन करना, बाबा को क्या क्या पसंद है, क्या वही हमें पसंद है? जैसे बाबा को यज्ञ सेवा बहुत पसंद है तो हमें भी बहुत पसंद है। हम कहें बाबा से हमारा बहुत प्यार और सेवा के लिए फुर्सत नहीं, तो प्यार माना जाएगा? हम कहें बाबा से हमें बहुत प्यार और मुरली सुनने की फुर्सत नहीं, तो प्यार माना जाएगा? बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार, बाबा से प्यार माना बाबा की सेवाओं से प्यार, बाबा से प्यार माना बाबा के बच्चों से प्यार, बाबा ये ब्राह्मण परिवार से प्यार। हम कहें कि बाबा से हमारा बहुत प्यार है, बाकी ब्राह्मण परिवार भी अच्छा है, लेकिन ये एक आत्मा है ना, ये बहुत भाई, इसे तो भगवान बचावे। अभी जिससे हम कहते भगवान बचाए, उसको किसने चुना है? बाबा ने चुना है। हम कहते बाबा से हमारा बहुत प्यार है और बाबा उसको प्यार करता है, बाबा ने उसको पसंद किया है, उसको हम दूर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो बाबा समान बनेंगे फिर? तो अब आप खुद इसके होमवर्क करना कि किस किस बात से बाबा को ये ड्रामा बहुत पसंद है। कई बार हम कहते हैं ये ड्रामा ये बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा से बाप समान बनेंगे, तो ऐसे आप इसकी एक लिस्ट बनाओ और चिंतन करो। स्लोगन स्लोगन योगी आत्मा, कौन है योगी तू आत्मा, जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहे, है ना। अंतर्मुखी माना अपने आप को देखना, स्वदर्शन करना, स्वपरिवर्तन करना, स्वचिंतन करना। और स्वचिंतन स्वचिंतन का मतलब है कि दोनों बातें, जैसे आज बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल अर्थात रचता रचना की नॉलेज के साथ साथ और किसकी नॉलेज, माया की भी नॉलेज, किस किस रूप में आती उसकी भी नॉलेज हो। अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी तो हार खा जाएंगे। तो ऐसे ही स्वचिंतन अर्थात अपने गुण विशेषताओं को जान करके उसको बढ़ाना और कमी कमजोरियों को पहचान करके उसको मिटाना, ये है स्वचिंतन। तो ये थी आज की मुरली। हम मुरली इसलिए जल्दी पूरा कर रहे हैं कि दूसरा हमारा टॉपिक है लेटर टू गॉड, है ना, भगवान को पत्र लिखना। लिखा है आज तक कभी? अच्छा, तो आज लिखेंगे सभी। सभी के पास डायरी पेन है? अच्छा, जिनके पास नहीं भी होगा एक दूसरे को मदद करेंगे, है ना। और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अपने मन से बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे, पहले आप सुन लो। सबसे पहले आप अपने सामने वो संबंध लाओ जो संबंध आपको बहुत प्यारा लगता है, ठीक है ना। माता का संबंध, पिता का संबंध, दोस्त का संबंध, जो संबंध आप समझते हो ये मेरा बहुत फेवरेट संबंध है, बहुत प्यारा संबंध है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, सर्व संबंधों से तुम मुझे याद करो। जिस भी संबंध से तुम मुझे याद करोगे उसी संबंध से मैं हाजिर हो जाऊंगा। बच्चे याद करे और बाप ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बाबा ने कहा जब मैं भगत मुझे याद करते हैं मैं उनको मदद देता हूं, तो तुम तो मेरे बच्चे हो, क्या मैं अपने बच्चों को मदद नहीं करूंगा। तो बाबा मदद के लिए हर पल, है ना, हर क्षण रेडी है। वो ऑफर कर रहा है, बच्चे मुझे यूज करो, मुझे, है ना, मैं हजार भुजा वाला हूं, बच्चे मुझे याद करो। मैं इंतजार करता रहता हूं कि कब मेरे बच्चे मुझे यूज करें। लेकिन जब हमारे सामने कोई विघ्न परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं आप सोचो। कोई समस्या विघ्न आती है तो आप क्या करते हैं, पहले अपने घर परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, हाँ भाई हमारे सामने समस्या आई है थोड़ा सा आप मदद कर दें, करते कि नहीं करते। और जब कहीं से मदद नहीं मिलती फिर बाबा याद आता है और बड़े प्यार से कहते बाबा आप ही तो हमारे हो, आपके अलावा हमारा और कौन है, आप ही तो हमारे सब कुछ हो। बाबा भी मुस्कुराता रहता है कि हाँ ये बच्चा सब जगह से घूम करके लास्ट में मेरे पास आया है। अभी देखो मनुष्य की नेचर और परमात्मा की, भगवान क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। आप मेरे पास आए, आप हमारे मित्र हो कि भाई मेरे पास समस्या आई मुझे मदद करो, और आप चारों तरफ से घूम करके लास्ट में मेरे पास आए हो, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा आप आ गए, अब देख लिया ना, भले हम मदद करेंगे लेकिन एक शब्द जरूर बोल देंगे, आप आ गए ना, कहीं से मदद नहीं, देख लिया ना दुनिया, है ना, फिर हम मदद करेंगे। लेकिन बाबा ये नहीं कहता, बाबा तुरंत मदद करता है। तो बाबा पूछते बच्चे कौन ज्यादा तुम्हें सहयोग देगा, हजार भुजा वाला भगवान या दो भुजा वाला मनुष्य? ये तो इतना डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है कि आप बिल्कुल साइलेंट में बैठे हैं। कौन ज्यादा सहयोग देगा, हजार भुजा वाला भगवान या दो भुजा वाला मनुष्य? तो बाबा ने कहा पता है हजार भुजा वाला भगवान ज्यादा सहयोग देगा, फिर तुम दो भुजा वाले की तरफ क्यों देखते हो? अब बाबा का प्रश्न है, उत्तर दो कि तुम दो भुजा वाले की तरफ क्यों देखते हो, क्यों नहीं मेरी मदद लेते? अच्छा वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो देहधारी दिखाई पड़ता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मदद मिले कि ना मिले ऐसा? बाबा ने कहा आप देखो आज तक आपको कौन मदद करता आया, आज तक कौन मदद करता आया? बाबा तो आगे भी बाबा आपको मदद करते रहेंगे, बाबा तो बना हुआ है मदद। तो हजार भुजा वाले को साथी बना के रखना दो भुजा वाले की तरफ। अच्छा 63 जन्म से तो देखते आए, देखते देखते हमारी ये हालत हो गई, बाबा ने कहा अब तो मुझे देखो। अच्छा तो अभी हम लेटर लिखेंगे, तो जो संबंध आपको बहुत प्रिय लगता है वो संबंध अपने सामने लाओ, और उस संबंध से आप अपने मन के भाव लेटर में लिखो, जो आपके मन में बाबा आपने मुझे इतना किया, ये सहयोग किया, वो जो आपके अंदर में आता है, आप लेटर के माध्यम से आप जैसे कि बाबा को सुना रहे हैं, ठीक है ना? एक लेटर आपका माध्यम है, आप लेटर में लिख रहे हैं जो बाबा ने आपके लिए किया, जो एहसान उपकार हुआ या प्राप्ति हुई, जो अनुभूति हुई, आपका विशेष बहुत प्यारा संबंध है, तो बाबा के नाम उस संबंध से आप लेटर लिखें। कितना समय? 5 मिनट? 5 मिनट समय है, ठीक है। 10 मिनट? अरे भाई आप लेटर लिखोगे तो वो भी तो कुछ लिखेगा, इसलिए 5 मिनट ही लो। 5 मिनट समय है, आप लिखिए। ओम शांति। लगता है कि बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई है और पूरा नहीं हो पा रहा है। हो गया, अभी नेक्स्ट चालू करें? लिख लिया? अच्छा बहुत समय की बातें इकट्ठी है ना, बातें करने में तो लिखने में तो टाइम जाता है। अच्छा लेकिन बातें तो दोनों तरफ से होती है ना, बाबा भी तो आपसे कुछ बातें करना चाह रहा है, आप ही सुनाते रहेंगे और उसको फिर बोलने का मौका ही नहीं देंगे क्या? उसकी भी तो सुनेंगे ना। अच्छा मैं समझता हूं, अभी आप पूरा करेंगे। अब दूसरा प्रश्न, आपने अपने मन की बात बाबा को सुनाया, हम वो नहीं पूछेंगे आपने क्या सुनाया बाबा को, ये आपके अपने अंदर की बात है, अपने दिल की बात है। अपनी दिल की बात आपने बाबा को सुनाया, लेकिन अब आपको बाबा उस संबंध से कुछ कह रहे हैं, बाबा भी आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दूसरा, आप भल आप आपका निमित्त आपका हाथ है, डायरी है, पेन है, लेकिन बोल बाबा रहे हैं, निमित्त मात्र आप लिख रहे हैं अपने हाथों से, आप फील करें कि बाबा मेरे से क्या बात कर रहे हैं, उसके जो हमने बाबा को कहा उसके रिस्पांस में बाबा हमें क्या उत्तर दे रहे हैं, तो आप वो लिखें अब, ठीक है ना? या जिनके पास नहीं है वो अपने मन में आप सोचो बाबा इसका आंसर हमें क्या दे रहे हैं, आप फील करो। आज तक तो हम अपनी सारी बातें बाबा को सुनाते आए, लेकिन अब हम बाबा की भी सुने, बाबा मेरे से क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप डायरी में लिखो या अपने मन में वो लाओ बातें, कि बाबा आपसे क्या बातें कर रहे हैं, जो आपका बहुत प्यारा संबंध है उस संबंध से बाबा आपसे क्या क्या बातें कर रहे हैं, आप फील करें ये बात। तो आप सभी ने अपनी दिल की बातें बाबा के सामने रखी और बाबा की भी बातें आप सभी ने सुनी। तो हमारी बातें तो बहुत गुप्त वाली बातें सबके सामने हम शेयर नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है, आप अपनी बातें भले नहीं बताओ लेकिन बाबा ने आपको क्या कहा वो तो आप बता ही सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे और एक मिनट में अपना अनुभव रखेंगे, आपको बाबा ने क्या टच की, क्या आपसे बातें की। तो एक माइक यहाँ पर, आप यहाँ आएंगे माइक उठाएंगे और एक मिनट में अपना अनुभव शेयर करेंगे कि बाबा ने आपको क्या कहा, आपको क्या टचिंग आई, क्या अनुभूति हुई। तो यहां पर आएंगे और माइक उठाएंगे। आइए, कौन आना चाहेंगे जल्दी, जिनको सुनाना है ना आगे के सोफा पर आकर बैठेंगे, पीछे से आने में लेट होता है ना, भले आगे आकर के बैठो, जिनको भी सुनाना है आगे आकर के बैठो, आगे वाले सोफा की लाइन पर।
ओम शांति।
हाँ चालू है, चालू सुनाइए।
ओम शांति। जैसे भाई साहब ने कहा कि आपको लेटर लिखना है, तो वैसे मैंने बाबा को लेटर लिखा और 5 मिनट्स का टाइम था, तो लग रहा था कि जैसे कम टाइम है, तो 5 मिनट्स में तो बहुत सारा कुछ कहना था बाबा को। तो मैंने बाबा को लिखा कि बाबा मुझे, मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। और मैंने बाबा को लिखा कि बाबा अमृतोला का कॉमेंट्री भी मुझे बहुत अच्छा लगा जो सुबह में सूरज भाई कराते हैं, और क्लासेस का अरेंजमेंट, जैसे कि कल रामनाथ भाई ने भी अच्छा क्लास कराया था। तो कितनी सारी हमारे लिए ज्ञान सरोवर वाले कितनी मेहनत करते हैं, तो ऐसे मेरे दिल से सहज निकल गया। तो बाबा ने कहा कि आप बच्ची तो सत्युग में विश्व महाराजा बनने वाली बच्ची हो, और बाप दादा का ब्लेसिंग्स सदैव आपके साथ है, तो ऐसा करके आप सदा बाबा से कनेक्ट रहो, सदा बाप दादा से जुड़े हुए रहो, और अपनी सच्ची दिल से सच्ची सच्ची बातें बाप दादा से करते रहो। ओम शांति।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बातें बाबा ने इनको टच कराया। हाँ आइए।
ओम शांति। बाबा ने मेरे को, मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरे को तो बहुत एग्जाम आती है, बहुत एग्जाम आती है। तो बच्ची तुम घबराती क्यों हो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो इनके। बार बार मेरे को ऐसा बोल के मेरा मगज को शांति दिलाते थे। और मेरे दो बच्ची एक है और एक बच्चे है, तो उसकी भी परीक्षा आती थी। तो मैंने बोला कि बाबा ये क्या होता है, तो कि तू उसके लिए क्या चिंता है, मैं तुम्हारे लिए बंधा हुआ हूँ, तो तुम मेरे लिए भी, उसके लिए भी मैं बंधा हुआ हूँ, तू चिंता मत कर, ऐसा कह के मेरे को बातचीत करने में बंद छोड़ देता है कि चिंता मत कर बच्ची, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। ओम शांति।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
ओम शांति। बाबा को मैंने 3 रूप में लेटर देखा, पिता, सदगुरु, टीचर के रूप में। तो फिर बाबा से पूछे तो बाबा यही बोले कि अच्छा तुम पिता के रूप में बाबा को किए, तो बाबा बोले, तो बाबा से मैं यही बोली कि बाबा आप सूरज श्रृंगार करना चाहते हो, तो यही लेटर था मेरा। तो बाबा इसके उत्तर में बाबा को मैंने देखी, बाबा से पूछी, तो बाबा बोले कि मैंने तो सूर्य श्रृंगार कराया, तुम अपने श्रृंगार को देखो, श्रृंगारी हुई है या नहीं। मुझे अंदर से ऐसा लगा। फिर मैंने बाबा को टीचर के रूप में लिखा था, फिर टीचर के रूप में फिर बाबा जी बाबा को बोले, तो बाबा बोले कि मैंने तो सारा विश्व की बात सारी राज सुनाई, तो तुम्हारे अंदर धारण है कि नहीं? तो मुझे अपने में ही लगा कि सच में बाबा तो दिया है, तो हमने कहाँ धारण किए, कितना धारण किए, तो इसमें बहुत अपने आप को हुआ। तो सदगुरु के रूप में भी बाबा से, बाबा को सदगुरु के रूप में लेके तो बाबा से पूछे, बाबा से बात किए, बाबा बोले कि मुक्ति तो सारे जगत को मिलने वाली है, जीवन मुक्ति में ले जाने के ज्ञान तुमको हमने दिया, तो जीवन मुक्ति में कौन सा पद लेना है, तो उसका क्या पूरा है तुम्हारे अंदर, यही मुझे महसूस हुआ कि हमें बाबा तो ऐसे सूर्य श्रृंगार कराना आया है, करा रहा है, हमारे अंदर कितने श्रृंगार है, हम श्रृंगारे हुए या नहीं, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता कितना हमने धारण किया, वो हमने अपने अंदर झांके तो अपने अंदर बहुत कमी मिला। ओम शांति।
बहुत बढ़िया। देखो अब इन्होंने देखा कि हाँ बाबा ने तो 16 श्रृंगार कराया है, लेकिन मैंने कहाँ तक किया है पता चला, है ना। अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत मुझे पता है सबके अंदर बहुत सुंदर सुंदर खजाना भरा है, लेकिन समय की अभी बहुत सीमा है। चलो अच्छा, माता जी के बाद पूरा करेंगे फिर।
ओम शांति। मुझे बाबा 2002 में मिले थे। जब से मैं बाबा को, बाबा जब से मुझे मिले हैं, तो उनका अनुभव में कुछ सुनाने जितना नहीं है, इतना बाबा ने मुझे दे दिया। मैं इतना भक्ति करती थी, मगर मैंने कभी सोचा नहीं कि बाबा से मुझे इतना सब प्राप्ति होगी। मेरा बहुत ऐसे टाइम आया था, मगर जब से मुझे एक बहन ले गई और खाली उन्होंने रास्ता बताया, तो उसी दिन मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सुख और शांति चाहिए, और मेरे 3 बच्चे हैं, तो उसमें एक मेरा बच्चा मेंटल रिटायर है, तो वो भी मंदिर में सेवा भक्ति करता है, मगर थोड़ा उसको तकलीफ था। तो जब से बाबा मिले तो मैंने उसका टेंशन भी छोड़ दिया, बाबा ये बच्चा अभी आप ही का है, आप संभालो, मुझे उसकी चिंता नहीं। जब से बाबा ने तो मुझे इतना दिया कि मैं उनकी कुछ प्रशंसा नहीं कर सकती हूँ, और मैं हर सबको बाबा के बारे में परिचय देते रहती हूँ, और एक झटके में मैंने भक्ति पूरा छोड़ दिया, मेरे घर में भी मंदिर सब बंद।
माता जी अभी आपको बाबा ने क्या कहा वो सुना दीजिए।
तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चा
आगे आ जाइए,
तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
हाँ।
जब भी कुछ भी काम है, और ये तो बाबा ने मुझे बहुत, मैं कभी भी कुछ भी याद करती हूँ ना, तुरंत दूसरे दिन मुरली में भी आ जाता है, और मुझे सपने में भी बाबा दिखाई देते। तो मैं बाबा से तो इतनी खुश हूँ, और मैं सबको यही दुआ देती और सबको यही कहती हूँ कि बाबा के बच्चे जो भी है उनका बहुत सबका कल्याण होगा, और बाबा से मैं हमेशा बात भी करते रहती हूँ, और बहुत मुझे फायदा हुआ है बाबा से।
बहुत बढ़िया। तालियां इनके लिए, भाई माता जी के लिए। हाँ, आइए सुनाइए।
ओम शांति। मैं अहमदाबाद रानी सेंटर से हूँ, और मेरी टीचर रेखा बहन है, और बाबा ने मेरे क्या बोल बोले वो मैंने अपने हाथों से लिखा। मैंने बाबा का बोला, बाबा ये मेरी पेन है और निमित आप बन रहे हो, पेन को बोला निमित आप बन रहे हो, और बाबा के शब्द है जो मैंने लिखा वो आप सबको सुना रही हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं किया, तूने जब पुकारा मैं दौड़ा चला आया, तेरी सारी समस्या का समाधान आज तक मैं ही तो करता आया हूँ, पर तूने मुझे जाना कब, तूने तुझे मैंने जीने की नई राह दिखाई, तुझे मैं सेंटर तक लाया, तेरा सोया हुआ भाग्य जगाया, तेरे बच्चों का प्रश्न मैंने सॉल्व किया, तेरी हर समस्या का मैंने समाधान किया। बेटी मैं हर घड़ी हर पल हर क्षण मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता नहीं, तू मेरा चिंतन कर, तेरा हर प्रश्न का जवाब मेरी मुरली पढ़ना उसमें से ही मिल जाएगा। मैं तुझे हर रोज अमृत वेला मिलने और उठाने आता हूँ, मैं ही तो हूँ जो तेरी संभाल करता हूँ, तुझे तेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे तेरी सब संभाल करनी है, मैं हूँ ना, मैं था हूँ और आगे भी रहूँगा, अंत में भी मैं तुम्हें शांति धाम में ले जाऊँगा, तू अपना पुरुषार्थ ऊँचा कर और बढ़ा, मैं तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा,
कोई तेरा कुछ कर ही नहीं सकेगा, तू निश्चिंत हो जा, मैं तेरे मन के जो भी प्रश्न चल रहे हैं ना वो सब पढ़ता हूँ बेटी, मुझे मालूम है तुझे तेरी बेटी की चिंता है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओम शांति।
क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अभी हम यहीं पर पूरा करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सबके पास बहुत सुंदर सुंदर खजाना है, बहुत सुंदर सुंदर बाबा ने आपको बातें बताई है। तो हमने दो चार लोगों का सुना और सबके पास है, और बहुत अच्छा। जब ये सुना रही थी तो माता जी मैंने ये सोचा कि देखो कई बार हम पूछते ना कि बाबा बैठा वतन में क्या करता है, तो बाबा ने कहा तुम सारे के सारे लोग इतना काम मुझे सौंप देते हो, मेरे बच्चों को संभालना, मेरे घर को संभालना, मेरी ये समस्या मिटाना, इतना सारा काम सौंप करके पूछते हो बाबा वतन में बैठ करके करते क्या हो। हाँ देखो, जितने लोग भी अपना अनुभव सुनाए तो बाबा ने उनके लिए क्या कहा, तुम चिंता ना करो मैं बैठा हूँ। तो सभी की चिंताओं का समाधान करने, सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए बाबा बैठा है। तो ये आप केवल आज की बात नहीं है, लेकिन अब आप रोज लिखना अपने घरों में बाबा के नाम लेटर, ठीक है, और बाबा आपको क्या रिस्पांस करते हैं फिर वो आप फील करना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जो कुछ है माँ, देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है घर में माँ बाप को बता करके निश्चिंत हो जाता है, हल्का हो जाता है, ऐसी कोई भी समस्या आती, कोई भी बातें आती, किसी दूसरे को नहीं सुनाना, बाबा को सुना दो, बाबा के रूम में जाकर के बाबा को बता दो, लेटर लिख दो, फिर आप देखेंगे आप बिल्कुल हल्के हो गए। तो ठीक है, बहुत सुंदर, सभी ने अनुभव किया, आप सभी ने इतना सुंदर सुंदर लिखा, अपना अनुभव सुनाया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।